दिन भर 15 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी ने कहा, कश्मीर की समस्या सुलझाई जा सकती है हर कश्मीरी को गले लगाकर।
न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है।
जिक्र होगा बिहार की बाढ़ का और ले चलेंगे आपको इतिहास के पन्नों में और बताएंगे क्या क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को।
14-15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हजूब के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, नारे लगा रहे थे महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 70वीं सालगिरह पर लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देश के लोगों से आस्था के नाम पर की जाने वाली हिंसा को खारिज करने की अपील की। कश्मीर मसले पर उन्होंने कहा कि यह समस्या गोली या गाली से नहीं बल्कि गले लगाने से सुलझेगी। अमरीकी पैसिफिक द्वीप गुआम के गवर्नर ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि उन्हें लगता है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल धमकियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त प्रतिक्रिया कारगर साबित हुई है। रिपब्लिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एडी कैल्वो ने कहा कि धौंस देने वालों से निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हें उसके नतीजे साफ कर दिए जाएं। इससे पहले उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक वहां के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने गुआम द्वीप पर मिसाइल हमला करने की योजना को टाल दिया था। गुआम में इस खबर का स्वागत किया गया। गवर्नर एडी कैल्वो ने कहा, आप धौंस देने वालों के साथ क्या करते हैं? सबसे पहले आपको यह पूरी ताकत से करना होता है और आपको यह साफ साफ करना होता है। मुझे लगता है कि उनका यह बयान हमारे सख्त संदेश का नतीजा है जो हमारे राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की ओर से दिए गए। ये थे गुआम द्वीप के गवर्नर एडी कैल्वो के शब्द। ब्रिटिश सरकार ने ब्रेग्जिट के अमल में आने के बाद यूरोपीय संघ से अस्थायी व्यापार व्यवस्था के प्रस्ताव सामने रखे हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि जब तक नए व्यापारिक समझौतों पर बातचीत हो रही है, उसका मकसद बाकी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हुए व्यापार के लिए निश्चितता मुहैया कराना है। ब्रेग्जिट की जिम्मेदारी देख रहे ब्रिटिश मंत्री डेविड डेविस ने कहा कि यह व्यवस्था 2 साल तक जारी रह सकती है, लेकिन यूरोपीय संसद के ब्रेग्जिट संयोजक गाय वरहॉफ स्टार्ट ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था एक कल्पना के जैसी है। बीबीसी विश्व सेवा ने ईरानी प्रशासन से उस आदेश को वापस लेने की अपील की है जिसके मुताबिक ईरान में बीबीसी कर्मचारियों की संपत्ति संभवतः फ्रीज कर दी गई है। बीबीसी विश्व सेवा की निदेशक फ्रैन अंसवर्थ ने इसे बीबीसी फारसी के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और अंशदाताओं को निशाने पर लेकर किया गया हमला बताया है। उन्होंने ईरान से अपील की है कि वे बीबीसी कर्मचारियों को वही आर्थिक अधिकार दें जो वहां सामान्य नागरिकों को प्राप्त हैं। बीबीसी की फारसी सेवा ईरान में प्रतिबंधित है और बीबीसी के लिए काम करना वहां गैर कानूनी है, लेकिन ईरान में बीबीसी को पढ़ने सुनने वालों की संख्या एक अंदाजे के मुताबिक करीब 1,30,00,000 है। फ्रैन अंसवर्थ ने कहा,
ये
निंदनीय है कि हमारे कर्मचारियों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि यह बीबीसी फारसी के लिए काम करने वाले किसी शख्स का निजी मामला हो। यह बीबीसी पर हमला है और यह लोगों में संदेश देने की कोशिश है कि बीबीसी फारसी में काम करना एक बुरी बात है। ये थे बीबीसी विश्व सेवा की निदेशक फ्रैन अंसवर्थ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में भूस्खलन होने से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। शहर के मेयर के मुताबिक अब तक 270 शव मिल चुके हैं। राहत और बचाव का काम अभी चल रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। शहर के मुर्दाघर भर चुके हैं, इसलिए मंगलवार को कई शव एक साथ दफनाए जाएंगे ताकि और शवों के लिए जगह बनाई जा सके। देश के राष्ट्रपति अर्नेस्ट बाय कोरोमा ने देशवासियों से वैसी ही एकजुटता दिखाने की अपील की है जैसी उन्होंने 2014 में इबोला बीमारी के फैलने के बाद दिखाई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने भाषण में कहा है कि आस्था के नाम पर हिंसा प्रसन्न होने की बात नहीं है। भारत में इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने न्यू इंडिया बनाने में हर भारतीय की भूमिका पर भी जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ देश की लड़ाई जारी रहेगी। सलमान रावी की रिपोर्ट।
पारंपरिक स्वागत और सेना और पुलिस की टुकड़ियों की सलामी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से बोले तो कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कहकर कई दिनों से चली आ रही अटकलों को विराम दे दिया। इस उद्घोष में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू कश्मीर का रहा। जम्मू कश्मीर पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने अलगाववादी नेताओं की कड़ी आलोचना की।
फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप प्रति आक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है, लेकिन भाइयों बहनों मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रखते रहते हैं।
प्रधानमंत्री का कहना था कि कश्मीर की समस्या का समाधान तभी संभव है जब बाकी का हिंदुस्तान कश्मीरियों को गले से लगाए।
लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विशेष साफ है, न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है, और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।
71वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के नाम पर हिंसा को देश के लिए जहर की संज्ञा दी। उनका कहना था कि आस्था के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कभी कभी आस्था के नाम पर धैर्य के भाव में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो समाज के ताने बाने को बिखेर दे। जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर देश का कभी भला नहीं कर सकता है। सबको साथ लेकर के चलना, ये इस देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, हमें इसको सफलता से आगे बढ़ाना है, और इसलिए आस्था के नाम पर हिंसा को बल नहीं दिया जा सकता है।
अपनी सरकार की 3 सालों की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से काले धन पर लगाम कसने का दावा किया और एक देश एक कर प्रणाली यानी GST के फायदों की चर्चा भी की। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज की उन महिलाओं की भी तारीफ की जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
मैं खास करके मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ।
कई और मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री पहले भी बोलते आए हैं, मगर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक आपदा पर उन्होंने चिंता जताई और गोरखपुर में मासूमों की मौत पर संवेदना भी प्रकट की। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी का 4था भाषण। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कश्मीर का खासा जिक्र किया। आइए देखते हैं कश्मीर के लोगों ने उसके भाषण को किस तरह से लिया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर ने ये रिपोर्ट भेजी है।
बहुत ही अच्छा बयान है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गोली किसके हाथ में है? आप मुझको देख रहे हैं, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, मेरे हाथ में गन नहीं है, गोली नहीं है। गोली बाहर हिंदुस्तान की आर्मी का जो बाहर आदमी खड़ा है मेरे घर के बाहर, उसके सामने है। हम एज अ प्रोटेस्ट कभी बाहर निकलते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर है, पत्थर का जवाब गोली से मिलता है, बट टू स्टार्ट विद वहाँ पे पुलिस वाला क्यों है, मेरे घर के बाहर क्यों है?
ये थे श्रीनगर के रहने वाले 30 साल के उमर फारूक, जो नरेंद्र मोदी के बयान को अच्छा तो बता रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया कि गोली किन के हाथ में है। 65 साल के अहमदुल्ला चिकन कहते हैं कि जो कुछ नरेंद्र मोदी ने आज कहा उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। वो कहते हैं,
अगर ये ज़बानी तौर कहते हैं कि गाली से बात नहीं बनेगी, गोली से बात नहीं बनेगी, बातचीत से बात बनेगी, लेकिन बातचीत का जहाँ तक ताल्लुक है वो दिल से होनी चाहिए, उसमें खलूस होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए।
श्रीनगर में अपनी दुकान चलाने वाले 35 वर्ष के फिरदौस अहमद कहते हैं कि आज से पहले भी उन्होंने भारत के कई नेताओं के ऐसे बयान सुने हैं, लेकिन कश्मीर का मसला फिर भी सुलझा नहीं।
हर एक कांग्रेस ने भी कहा हम ये कश्मीर का हल मसला हल करेंगे, मगर कोई कहते हैं मगर करते कुछ नहीं है।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि कश्मीर समस्या का हल सिर्फ बातचीत में है। उन्होंने कहा,
देखिए बयान तो उनका अच्छा है और मैं समझता हूँ कि अगर मोदी साहब भी इस बात में यकीन रखते हैं कि गोली से या गाली से मसाइल हल नहीं होंगे, हम तो यही कहेंगे कि इंसानियत और इंसाफ वक्त का तकाजा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बहुत पहले से कहती आई है कि कश्मीर का मसला जो है वो मिलिट्री मसला नहीं है, वो मिलिट्री तरीकों से हल नहीं होगा, ये एक सियासी मसला है, एक इंसानी मसला है।
तहम निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी आज कहा है वो सब एक फरेब है।
ये ड्रामाबाजियां नहीं चलेंगी, वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं और अपना नरम नरम और मीठी मीठी बातें करके दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही जमहूरियत और महजब मुल्क है।
राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि तमाम समस्याओं का हल बातचीत और शांति के माहौल में निकल सकता है। इस बीच आज अलगाववादियों की कश्मीर बंद कॉल के चलते कश्मीर का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। श्रीनगर में किसी भी चरमपंथ हमले को नाकाम बनाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अभी एक और विषय, बिहार में अररिया जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बाढ़ के कारण यहां के लोगों का घर बन गया है। सड़क के दोनों किनारों पर आसपास के हजारों लोगों ने अपना अपना बसेरा बना लिया है। हमारे साथी नीरज सहाय ने वहां कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर ये रिपोर्ट भेजी है।
अभी मैं अररिया शहर के बीचों बीच स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 पर खड़ा हूं। जिले के हजारों लोग इसी सड़क के दोनों किनारे अपना अस्थायी घर बनाए हुए हैं। परवान नदी के उफान पर होने की वजह से इनके घर बाढ़ में समा गए हैं। इनका नया ठिकाना अब यही सड़क बना हुआ है।
मेरा नाम मोहम्मद साबिर अंसारी है और मैं शनिवार से यहाँ सड़क पे हूँ।
मतलब यहाँ रहने को क्यों मजबूर हुए?
बाढ़ पानी की वजह से, पानी बहुत आ गया घर में, एक मरत पानी लग चुका।
आज क्या स्थिति है?
आज तो हल्का कम है सर पानी।
जब तक वापस जाएंगे सर?
सर वापस आप पानी सूखेंगे तब न जाएंगे सर।
यही अररिया वार्ड नंबर 11 से खरैया बस्ती मुसारी टोला से।
कहाँ रह रही हैं अभी? सड़क पर?
यहाँ सड़क पे।
कब से रह रही हैं?
रविवार के दिन से, रविवार के सुबह से।
अभी वापस जाने का क्या है?
अभी ना सर, अभी तो कोई साधन नहीं, उधर अंदर में जाके देखे कोई साधन नहीं सर। हमें
कितना पानी है?
अभी इतना पानी है, अगर ना है बरसात चल के देख लीजिए अंदर, कोई साधन नहीं। हम
घर के ऊपर
इतना इतना पानी है।
दोपहर में राहत सामग्री बंटने आया तो सड़क पर लंबी कतार लग गई। कई पानी में डूबे अपने घर से भीगे कपड़े में दौड़ कर भागे भागे आए।
घर गए थे देखने के लिए पानी उसमें घर में है तो सामान उमान देखने के लिए गए थे, और क्या करेंगे, यहाँ चूड़ा पड़ रहा है तो खाएंगे नहीं क्या?
सर वहाँ 5 दिन से हम लोग यहाँ पानी घिरा हुआ है, 5 दिन से न सर कोई राहत नहीं है, घर में पानी घुसा हुआ, छत पे भी पानी है, कहीं कुछ नहीं। हम लोग सर नाव का केला का गाछ काट काट करके सर हम लोग नाव बना के यहाँ आए हैं।
बाढ़ की स्थिति अररिया में अभी सामान्य नहीं हुई है, बिजली और संचार व्यवस्था ठप है, जिले के कई गाँव में तो पहुँचना नामुमकिन जैसा है। नीरज सहाय, BBC अररिया।
अररिया बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। गुजरती हुई हर सदी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या बार बार की जाती है, और कहा जाता है कि यहाँ इतिहास का निर्माण हुआ था और यहाँ मनुष्य का जीवन विभिन्न पड़ावों से गुजरता हुआ नई दिशा की ओर अग्रसर होकर नए मुकाम तक पहुँचा था। भारत के इतिहास में ये क्षण आया था 14-15 अगस्त 1947 को। क्या क्या हुआ था उस ऐतिहासिक दिन में, सुनिए पार्टीशन पर हमारी विशेष सीरीज के अंतर्गत एक विशेष रिपोर्ट।
Start to boom out, and there it flies on the masthead, the flag of the new Dominion of India.
भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की ऐतिहासिक रस्म। स्थान प्रिंसेस पार्क, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। दुनिया और भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन में एक नया मोड़। ब्रिटिश राज के अंत की ये कहानी 1947 के आरंभ में शुरू हुई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को एक बड़ी आशा ये थी कि भारत बिना किसी बंटवारा किए सुलह शांति के साथ आज़ाद होगा, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हुई और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करनी पड़ी।
India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. It has been a prime object of British policy to maintain the unity.
हिंदुस्तान सदियों से तितर बितर रहने के बाद ब्रिटिश राज के अधीन एक हुआ और एक रहा। ब्रिटिश नीति का पहला उद्देश्य ये रहा कि इस महान उपमहाद्वीप की इस एकता को बनाए रखा जाए, और हमें आशा थी कि देश के आज़ाद होने के बाद भी वो बनी रहेगी। कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे भी यही उद्देश्य था, लेकिन हिंदुस्तानी नेता इस योजना से सहमत नहीं हो सके और अब देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसका मतलब ये कि ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज अब दो सरकारों को कुछ ही महीनों में सौंप दिया जाएगा।
क्लेमेंट एटली के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी देश को संबोधित किया।
You have just heard an announcement.
आज मैं आप सबको एक और ऐतिहासिक मौके पर संबोधित कर रहा हूं, जब एक ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया गया है जिसका असर हिंदुस्तान के भविष्य पर पड़ेगा। आपने ब्रिटिश सरकार की वो घोषणा सुनी जिसमें हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में आत्मनिर्णय की बात कही गई है, मतलब ये कि ये इलाके हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही देश की आज़ादी का वचन भी दिया गया है। हमने ये सुझाव मान लेने का फैसला किया है, खुशी से नहीं, क्योंकि पीढ़ियों से हम एक संयुक्त हिंदुस्तान और उसकी आज़ादी के लिए लड़ते आए हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमने जो फैसला किया है वो ठीक है।
14 अगस्त की शाम जवाहरलाल नेहरू अपने 17 यॉर्क रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ खाने की मेज पर बैठे ही थे कि बगल के कमरे में फोन की घंटी बजी। लाइन इतनी खराब थी कि नेहरू ने फोन कर रहे शख्स से कहा कि उसने जो कहा उसे फिर से दोहराए। डोमिनिक लापेयर और लेरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं,
जब नेहरू ने फोन रखा तो उनका चेहरा सफेद हो चुका था, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला और उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। जब उन्होंने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने इंदिरा को बताया कि ये फोन लाहौर से आया था। वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। नेहरू ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा था, मैं आज देश को कैसे संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि देश की आज़ादी पर मैं खुश हूं, जबकि मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है।
इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण पर ध्यान दीजिए जो कि आपको आज रात देश के सामने देना है, लेकिन नेहरू का मूड उखड़ चुका था। बहरहाल संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक 11:55 पर नेहरू की आवाज गूंजी।
लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होल्ली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली।
बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब वो समय आ पहुंचा है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी के स्वागत में अपनी आंखें खोलेगा।
जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां गाया और फिर बंकिम चंद चैटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक थे जाने माने पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह।
14:15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हजूब के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर तो मेरे जैसे थे, रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, और कईयों के तो सब कुछ खो गया था। मेरा भी जाता रहा, मगर उस वक्त इतना उत्साह था आजादी का कि वो कुछ रोज के लिए तो उनको ख्याल ही नहीं आया। नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।
संसद भवन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। देर रात जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने गवर्नमेंट हाउस आए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। लापियरे और कॉलिंस लिखते हैं,
माउंटबेटन ने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना ग्लास कर कहा, किंग जॉर्ज 6 के लिए। नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा देकर कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जानी है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना ही भूल गए थे।
सुबह 8 पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को। इसके बाद माउंटबेटन ने जॉर्ज 6 का संदेश पढ़कर सुनाया।
दिस इज हिज मैजेस्टीज मैसेज ऑन दिस हिस्टोरिक डे व्हेन इंडिया टेक्स हर प्लेस।
इस ऐतिहासिक दिन पर जब भारत एक आजाद देश की हैसियत से राष्ट्रमंडल में अपनी जगह ले रहा है, मैं आपको दिली बधाई और शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप और आपके नेता अपनी पूरी राजनीतिक सूझबूझ के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे।
शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शाम 5 इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 6,00,000 लोग इकट्ठा थे।
Middle of a vast sea of seething humanity that's poured into the Prince's Park in New Delhi. Frankly, I've never seen so many people. They must be here literally in their hundreds of thousands. A great swarming, excited, cheering, enthusiastic Indian crowd to celebrate the climax of the day's excitement in New Delhi.
माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामेला भी दो लोगों के साथ उस समारोह को देखने पहुंची थी। भीड़ इतनी थी कि उनके लिए एक इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल था। नेहरू ने पामेला को देखा तो चिल्लाकर कहा कि वो लोगों के सिर पर चढ़कर मंच पर पहुंचे। पामेला माउंटबेटन ने अपनी किताब इंडिया रिमेम्बर्ड में लिखा,
मैंने चिल्लाकर कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है। नेहरू बोले, सैंडल को हाथ में ले लो। मैं ऐसे ऐतिहासिक मौके पर ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। नेहरू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा, मेरी हील उन्हें चुभेगी। नेहरू बोले, नादान लड़की, सैंडल को हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उनकी देखा देखी मैंने भी सैंडल को उतारकर हाथों में ले लिया और इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुंच गई।
उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, लेट्स होइस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली। नेहरू के इशारा करते ही तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने 25 गज की दूरी से अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेसाख्ता निकला, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के इतिहास में किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि लोग इतनी शिद्दत से उसकी जय जयकार करें। जैसे ही झंडा ऊपर गया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आजादी के दिन का स्वागत कर रही
है। The shouts of Jai Hind and the booming out of the 31 gun salute, there flies the flag over Prince's Park and behind it the great monsoon clouds are piling up, a shower of rain goes sweeping across the old Mughal fort, and a rainbow, a vivid rainbow, breaks out right across the sky, a symbol we all wish we were here for the future hope and prosperity of the new dominion of India.
Bharat ka pehla swatantrata divas. Kaisi lagi hai aapko ye report? Zarur likhega. Aur chalte chalte mukhya samachar ek baar phir.
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 70वीं सालगिरह पर लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देश के लोगों से आस्था के नाम पर की जाने वाली हिंसा को खारिज करने की अपील की। कश्मीर मसले पर उन्होंने कहा कि यह समस्या गोली या गाली से नहीं बल्कि गले लगाने से सुलझेगी। अमरीकी पैसिफिक द्वीप गुआम के गवर्नर ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि उन्हें लगता है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल धमकियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त प्रतिक्रिया कारगर साबित हुई है। रिपब्लिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एडी कैल्वो ने कहा कि धौंस देने वालों से निपटने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हें उसके नतीजे साफ कर दिए जाएँ। ब्रिटिश सरकार ने ब्रेग्जिट के अमल में आने के बाद यूरोपीय संघ से अस्थायी व्यापार व्यवस्था के प्रस्ताव सामने रखे हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि जब तक नए व्यापारिक समझौतों पर बातचीत हो रही है, उसका मकसद बाकी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हुए व्यापार के लिए निश्चितता मुहैया कराना है। बीबीसी विश्व सेवा ने ईरानी प्रशासन से उस आदेश को वापस लेने की अपील की है जिसके मुताबिक ईरान में बीबीसी कर्मचारियों की संपत्ति संभवतः फ्रीज कर दी गई है। बीबीसी विश्व सेवा की निदेशक फ्रेन अंसवर्थ ने इसे बीबीसी फारसी के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और अंशदाताओं को निशाने पर लेकर किया गया हमला बताया है। अफ्रीकी देश सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में भूस्खलन होने से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। शहर के मेयर के मुताबिक अब तक 270 शव मिल चुके हैं। राहत और बचाव का काम अभी चल रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। फेसबुक पर यह कार्यक्रम आप तक पहुँचा रही थी भूमिका बैनर्जी। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।